أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. هر وہ دن جس دن انسان معصیت نہ کرے وہ عید کا دن ہے. عزیزان گرامی، عید الاضحیٰ سر پر ہے، آنے والے دنوں میں آپ سب عید کی تیاریوں میں زور و شور سے مصروف ہوں گے. پھر آپ بھیڑ خریدیں گے، بکرا خریدیں گے، گائے خریدیں گے، بیل خریدیں گے، اونٹ خریدیں گے اور جا کر قربانی کریں گے، خوشیاں منائیں گے، تکے بنائیں گے، کھائیں گے. عید ہمارے ہاں ایک تہوار ہے، ہمارے ہاں ایک رسم ہے، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عید کی اسلامی اور دینی بنیادیں کیا ہیں. عید آدھا یعودوں سے نکلا ہے. عید کا مطلب یعنی اپنے رب کی طرف لوٹنا، آدھا یعود عودن، اپنے رب کی طرف لوٹنا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ حدیث فرمائی، کل یوم لا یعص اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ عید کا حقیقی مفہوم کیا ہے. عید کا حقیقی مفہوم اپنے رب کی طرف برگشت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. کس چیز سے لوٹنا؟ ہر وہ عمل جو انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا، ہر ایسا کام جس سے اللہ اور اس کی مخلوق، اس کے بندوں کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، اس عمل اور اس کام سے اپنے آپ کو بچانا. انسان صرف خوشگپیوں کے لیے، محفلیں سجانے کے لیے، تہواریں منعقد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. انسان کی زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ اور بہت عرفا ہے. اس اعلیٰ اور عرفا مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو نئی جہتیں ہمارے سامنے کھل جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے جن ویلیوز، اقدار اور امور کی طرف ہمیں متوجہ کیا اور ہمیں ان تمام چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا، یہ محض ایکسرسائز نہیں ہے، یہ صرف روٹین ورک نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے حکمتیں ہیں، ان کے پیچھے فلسفے ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے اہداف ہیں. روزوں کی بھی جب عید ہوتی ہے تو غالباً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ یہ عید تو انہی کی ہے جن کے روزے قبول ہوئے ہوں، جن کے روزے قبول نہ ہوئے ہوں ان کی کیا عید ہے. اب جب عید الاضحیٰ سر پر ہے تو یہ آپ اس کو بکرا عید کہتے ہیں، بکر عید بھی کہا جاتا ہے. عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید، ایک قربانی کی یاد، حضرت ابراہیم کی قربانی. حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں لاکھوں لوگ بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر مخصوص مناسک بجا لاتے ہیں، اور ان مناسک کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکرے کی قربانی بھی کرتے ہیں. یہ قربانی اصل میں ہے کیا؟ اس وقت آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے، مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے قربانی کے جانور کی نمائش کی جاتی ہے، اور خوب کھلا پلا کر اس کو موٹا کر کے میدان میں لایا جاتا ہے تاکہ خریدنے والا فخر سے سر اٹھا کر کہہ سکے کہ میں نے 300,000 میں یہ جانور خریدا ہے قربانی کے لیے، اور ٹی وی پہ آ کے بھی بڑے فخر سے کہے کہ میں نے اتنا مہنگا جانور قربانی کے لیے خریدا. और उसको पालने वाला भी आकर बड़े फखरिया अंदाज में ये कह रहा होता है कि मैंने इसको दूध पिला के इतना मोटा किया है, मैंने इसको बादाम खिला के इतना मोटा किया है, मैंने इसको फलान मेवा खिलाया है, इसलिए इसकी इस तरह की सेहत हुई है। सवाल ये है कि क्या खुदा यही चाहता था? आपने जो बादाम, जो दूध, जो ताकतवर और मुरगन गजाएं इस जानवर को खिलाई हैं, क्या खुदा की यही मशीयत थी, यही ख्वाहिश थी? काश आप ये सारी चीज़ें किसी गरीब, किसी बेवा, किसी यतीम को खिला देते, उस भूखे का पेट भरते जिसको एक वक्त का ठीक तरह से खाना भी नहीं मिलता है, उस यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखते इन्हीं पैसों से जो आपकी निगाह इल्तफात और आपके तवज्जोह का मुस्तहिक है। लेकिन हमने क्या किया? हमने चूंकि इसको भी कारोबार, बिजनेस का जरिया बनाया है, कमर्शियल कर दिया है, इसलिए इसको भी इसी निगाह से हमने देखना शुरू कर दिया। दीन हो गया कमर्शियल, कुर्बानी हो गई कमर्शियल। ये जो कमर्शियलिज्म है ये दीन नहीं है, इससे अल्लाह राजी नहीं है। कुर्बानी का मतलब क्या है? अपनी ख्वाहिश का गला घोंटना, अपनी आरजुओं का गला घोंटना, सिर्फ गला घोंटना नहीं, अपनी आरजुओं और अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर किसी और जरूरतमंद और मुस्तहिक बंदे की ख्वाहिशात को पूरा करना, यह है कुर्बानी, यह है ईसार। यह कैसी कुर्बानी है कि हम टीवी के स्क्रीन के सामने आकर ऐलान करते रहे और महल्ले में जब कोई बैल और बड़ा जानवर लेके आए तो पूरे महल्ले में डंडोरा पीटें, ढोल बजाएं और आखिरी दिन जब उसको ज़बह करें तो उसका गोश्त फ्रिजों में भर कर रख दें और सारा अरसा वो इस्तेमाल करते रहें? ये कुर्बानी नहीं है, नहीं ये ईद है, ये अल्लाह को पसंद नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन भेड़ या बकरा रिवायात में आता है ज़बह फरमाया। हज़रत आयशा करीब थी, टुकड़े किए, लोगों में बांटा, उस जानवर की एक टांग हज़रत आयशा ने रख ली और बाकी सारा दे दिया। कुछ देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा गोश्त का क्या हुआ? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक टांग बाकी है, बाकी सब ख़त्म हो गया। तो फरमाया, नहीं आयशा ऐसा नहीं है, एक टांग ख़त्म हो गई, बाकी सब बाकी है। इस्तेजाब, हैरत अंगेज निगाहों से उम्मुल मोमिनीन ने रसूल करीम की तरफ देखा और पूछा, या रसूलल्लाह आप क्या फरमा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। फरमाया, जो कुछ तुमने दूसरों को दिया अल्लाह की राह में वही बाकी है, और जो तुमने अपने घर में संभाल के रखा खुद खाने के लिए वो फना हो गया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। कुर्बानी ये होती है, कुर्बानी इसको कहते हैं। फिर कुर्बानी सिर्फ बकरे और भेड़ की ज़िबह के अंदर पोशीदा नहीं है। ये जो ईद आ रही है ये ईद हजरत इब्राहिम की याद ताजा करती है। हजरत इब्राहिम ने क्या किया था? हजरत इब्राहिम ने भेड़ तो कुर्बान नहीं किया, ऊंट तो कुर्बान नहीं किया, बकरा तो कुर्बान नहीं किया। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माईल को पकड़ कर लेकर आए और उस इस्माईल की कुर्बानी की। दूसरे लफ्जों में, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महबूब चीज हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रजा के लिए कुर्बान करने का इरादा किया। यह अल्लाह का काम था कि जब हजरत इस्माईल की गर्दन पर छुरी रख दी गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माईल को हटा दिया और उसकी जगह भेड़ आ गया। ये अल्लाह का काम था। हजरत इब्राहिम ने भेड़ कुर्बानी की। इस कुर्बानी का मतलब क्या है? इस कुर्बानी का मतलब यह है कि मैं अपना इस्माईल कुर्बान करूं जो मुझे पसंद है। कुर्बानी का मतलब यानी मैं अपनी पसंद को कुर्बान करूं। हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी में हज़रत इस्माईल उनकी पसंदीदा तरीन फर्जंद की हैसियत से थे, लिहाजा उन्होंने अपने महबूब को, अपनी महबूब तरीन शे को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किया। अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी का मतलब अपनी महबूब तरीन चीज की कुर्बानी है। अब देखना यह है कि हजरत इब्राहिम ने अगर अपना इस्माईल कुर्बान किया है, उनका इस्माईल हजरत इस्माईल थे, हमारी जिंदगी में हमारा इस्माईल कौन है? हमारी जिंदगी में अगर हमारा इस्माईल पैसा है तो पैसा कुर्बान करो, अगर हमारा इस्माईल दौलत है कुर्बान कर दो, अगर मनसब है कुर्बान करो, अगर बच्चे हैं कुर्बानी के लिए तैयार नजर आओ, अगर हैसियत है कुर्बानी के लिए तैयार नजर आओ। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है और वो चीज हमारी निगाह में महबूब है, उन तमाम चीजों की कुर्बानी का नाम हकीकी कुर्बानी है। और ये जो हम बकरे और भेड़ की कुर्बानी करते हैं, ये एक सिंबल है, एक अलामत है। रूह क्या है? इंसान खुशी से अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करे अल्लाह की ख्वाहिश के मुकाबले में, जिस तरह से हजरत इब्राहिम ने की। ईद खुशियों का दिन है, लेकिन कैसी खुशी? सिर्फ आपकी नहीं, हमसायों की खुशी का ख्याल रखें, शहर के दीगर लोगों की खुशी का ख्याल रखें, कच्ची और गरीब आबादियों में जाकर उनकी खुशियों का ख्याल रखें, दूर दूर के उन मुदाफाती इलाकों में जहां पर लोग साल भर में एक दफा बड़ी मुश्किल से गोश्त खाते हैं, उनके हाँ गोश्त पहुंचाएं और उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखें। आप और हम शायद रोज गोश्त खाते हैं, लेकिन जिनको 40-50 दिनों में एक दफा मुश्किल से गोश्त नसीब होता है, ये ईद उनके लिए है। इसलिए कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के बाद तीन हिस्सों में तकसीम करने का हुक्म दिया गया है। एक हिस्सा आपका है, एक हिस्सा आपके अजीज और अकारिब का है, और एक हिस्सा आम गरीब मोहताज जरूरतमंद मुसलमानों का है। अब देखना यह है कि हम किस हद तक कुर्बानी के इस फलसफे और इस उसूल को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल शक्ल में लाने में कामयाब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी ईदों को उस तरह की ईद करार दे जिससे अल्लाह राजी हो और हमें हकीकी मानों में कुर्बानी का जज्बा, कुर्बानी की रूह से आशनाई और उसके नतायज के हुसूल की तौफीक और सलाहियत अता फरमाए। रब्बना تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته